स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। वहां से विदुर जी सूरत, सौवीर, मत्स्य जैसे समृद्ध प्रदेशों तथा कुरुजांगल के नाम से प्रसिद्ध पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में होते हुए अंत में यमुना के तट पर पहुंच गए, जहां उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव से हुई। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली से उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद तक लगभग 100 वर्ग मील भूमि, जिसमें हरियाणा के गुड़गांव जनपद का कुछ भाग भी आता है, भारत भर में तीर्थ यात्रा का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में अनेकानेक बार भ्रमण किया है, इसलिए यह भूमि अति पावन मानी जाती है। श्री कृष्ण का प्राकट्य उनके मामा कंस के जेल मथुरा में हुआ और फिर श्री वृंदावन में उनके पिता महाराज नंद ने उनका पालन पोषण किया। आज भी वहाँ बहुत से भक्त श्री कृष्ण और उनकी सहचरी गोपिकाओं का अन्वेषण करते हुए भाव विभोर होकर भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस भूमि में ये भक्त श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेते हैं, पर वस्तुतः भक्त द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उत्कट अनुसंधान उनके प्रत्यक्ष दर्शन के समान है। ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों को इसकी यथार्थ अनुभूति होती है। दार्शनिक दृष्टि से यह समझा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण और उनका स्मरण अद्वय परम स्तर पर है और विशुद्ध कृष्ण भक्ति में निमग्न होकर वृंदावन में उनकी खोज करने की इच्छा मात्र से भक्त को यह आनंद मिलता है, तो जो कदाचित उनके प्रत्यक्ष दर्शन से भी नहीं मिल सकता। ये भक्त अपने नेत्रों से भगवान का प्रतिक्षण प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, जैसा ब्रह्म संहिता 5:38 द्वारा प्रमाणित है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रेम के परमानंद से परिपूर्ण हैं, वे प्रेम और भक्ति के निरंतर समर्पण के द्वारा उन्हें नित्य निरंतर अपने हृदय में देखते हैं। विदुर और उद्धव दोनों ऐसे ही उत्कृष्ट भक्त थे, इसलिए वे दोनों यमुना के तट पर आए और एक दूसरे से भेंट की। वहां से विदुर जी सूरत, सौवीर, मत्स्य जैसे समृद्ध प्रदेशों तथा कुरुजांगल के नाम से प्रसिद्ध पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से होते हुए अंत में यमुना के तट पर पहुंच गए, जहां उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव से हुई। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त तीर्थ स्थान में भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के भ्रमण करते हैं भगवान की खोज में, तो उन्हें भगवान की उपस्थिति की अनुभूति होती है, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के प्रति ये उत्कंठा के कारण भगवान की उपस्थिति को अत्यंत प्रगाढ़ रूप में अनुभव करते हैं, और इस प्रकार उनको जो आनंद मिलता है वो कदाचित साक्षात भगवान के दर्शन से भी प्राप्त न हो। तो ये भगवान को समझने का और उनको उनके दर्शन प्राप्त करने का अधिकृत तरीका है कि हम कृत्रिम रूप से या इन जड़ नेत्रों से भगवान को देखने के लिए प्रयास छोड़ करके भगवान की सेवा के प्रति अपने हृदय में उत्कंठित इच्छा जागृत करने के लिए प्रयासरत हों। वो सरल मार्ग है और वही सही मार्ग है भगवान को यथारूप जानने के लिए। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं जो लोग गुरु शिष्य परंपरा के मार्गदर्शन में भक्ति पथ अनुसरण नहीं करते हैं तो वे जो नापने की वृत्ति है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जैसा समझाते थे कि जो सामान्य जीव हैं भौतिक जगत में, तो हर चीज को जड़ इंद्रियों से देखने के अभ्यस्त हैं और वो भगवान को भी अपनी जड़ इंद्रियों के विषय मानते हैं, इसलिए हर चीज को अभ्यस्त हैं नापने के लिए अर्थात जड़ इंद्रियों से देखने के लिए। इसी ये एक प्रकार की परिभाषा है, एक परिभाषा है माया की कि मापने की टेंडेंसी, उसे माया कहते हैं। यानी हर चीजों को अपनी जड़ इंद्रियों से सब कुछ ग्राह्य है, ये सोचना कि हम परफेक्ट हैं, हम पूर्ण हैं और हमारी इंद्रियां पूर्ण परिपूर्ण हैं हर चीज को जानने के लिए, और इसीलिए जो भी कुछ हम अपनी जड़ इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं इसका अर्थ है कि वो है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये विचार, ये धारणा, ये माया है। तो सामान्य रूप से बद्ध जीव इस धारणा में बहुत अधिक जकड़े होते हैं। और जब तक वो अपनी तुच्छता को स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी इंद्रियों की अपूर्णता को स्वीकार नहीं करते हैं, जिन्हें दूसरे शब्दों में कहा गया है ज्ञाने प्रयास मुदपस्य, ज्ञान के प्रयास को अपनी इंद्रियों और बुद्धि मन के द्वारा संपूर्ण तथ्य को जानने के प्रयास को छोड़कर अपनी तुच्छता को समझते हुए भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान की शरण लेने का मार्ग ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक उनके लिए भगवान का दर्शन हमेशा कोटि कोटि योजन दूर रहता है। चिरन अचिन्वन जो इस प्रकार के मार्ग में हैं, वो एक कितने हजार हजार वर्षों तक प्रयास करने पर भी कभी भगवान के नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके विपरीत जो नम्रतावश समझते हैं कि हम हर क्षण भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, उन पर आश्रित हैं, और क्योंकि हम तुच्छ हैं, भगवान के द्वारा पोषित हैं, उन पर आश्रित हैं, इसलिए स्वाभाविक है मेरा कार्य उनकी सेवा करना, और इस प्रारंभिक सेवा वृत्ति के को धारण करते हुए भगवान की खोज करते हैं अधिकृत तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्रवणम कीर्तनम की विधि से, और इस प्रकार धीरे धीरे अपने हृदय में भगवान की सेवा में उद्धृत होने के लिए उत्कंठित इच्छा को कल्टिवेट करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान सरलता से ग्राह्य होते हैं। इसे ही प्रभुपाद जी बताते थे, उनके गुरु महाराज उनको बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन ए वे दैट गॉड इज प्लीज टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास न करके इस प्रकार से आप भगवान की सेवा करने का प्रयास कीजिए जिससे भगवान प्रसन्न होकर आपको देखें। तो हम भगवान को देखने के इच्छुक से इच्छा से अधिक प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा इतने अच्छे ढंग से कर सकें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब हम भगवान का दर्शन वास्तव में कर पाते हैं, तब हम यथारूप भगवान को समझ पाते हैं। ये विधि है। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिनके हृदय में, जिनके नेत्रों में प्रेम का अंजन लगा है तभी वे भगवान का दर्शन सदैव अपने हृदय में कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति के हृदय में अभी भी मैं महान हूँ ऐसा विचार रहता है, या मैं सक्षम हूँ, मेरी इंद्रियाँ बड़ी प्रबल हैं, भगवान मेरे बुद्धि के अंदर समा सकते हैं, मेरी इंद्रियों के अंदर समा सकते हैं, अर्थात मैं भगवान से बड़ा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, ये भाव जब तक है तब तक भगवान को हम नहीं समझ सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन मुख्य ही जीवादौ स्वयं एव स्फूर्त अधा। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को वो भौतिक इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सेवोन्मुख हो जाता है और जिस प्रकार जिस अनुपात में उसकी सेवा भावना प्रगाढ़ होती है उस अनुपात में वो भगवान के उपस्थिति को अनुभव कर पाता है। तो जैसे यहाँ वर्णन है कि जो भक्तगण तीर्थ स्थानों में यात्रा करते हैं, भगवान उत्कंठित इच्छा से कि कहाँ है भगवान, कहाँ है, क्यों मुझे दिखते हैं, कब मैं उनको देख पाऊंगा, अर्थात कि मैं मेरा हृदय कितना मलिन है कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पाऊँ, इस भावना से वो उत्कंठित है। ऐसे नहीं कि कहाँ है भगवान, यदि है तो मुझे दिखने चाहिए, और नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब नहीं है, इस भावना से नहीं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मेरे हृदय में भी आवरण है इससे नहीं दिख रहे हैं, इस भावना से जो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्कंठित है, अर्थात वे अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए उत्कंठित है और इस भावना से वो भगवान के लिए आतुर है, तो भगवान उनके हृदय से वो कलमश, ये जो उत्सुकता है भगवान का दर्शन प्राप्त करने की, इस माध्यम से इस प्रकार से कि मेरे हृदय को भगवान आप शुद्ध करें, तो भगवान उनके हृदय में जो कलमश है उसको साफ करते हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंत स्थय अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। तो ऐसे जो भक्त हैं उनके हृदय में भगवान स्वयं उनके हृदय के अंदर उपस्थित सभी गंदगी को खत्म करते हैं, जिससे वो क्रमशः भगवान को की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए सक्षम होते हैं। तो यही उदाहरण देखते हैं हमारे षड गोस्वामियों के जीवन से भी, जो स्तुति है षड गोस्वामी की, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे गोस्वामीगण हमेशा इस प्रकार से आतुर रहते थे, कहाँ है कृष्ण, क्या वृंदावन, क्या गोवर्धन के गोवर्धन पर हैं, वंशीवट पर हैं, कहाँ हैं, तो इस प्रकार से ये उत्कंठा रहती थी, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। लेकिन जो व्यक्ति अधिकृत रूप से भक्ति पथ पर नहीं है, वे कृत्रिम रूप से दावा करते हैं हमने भगवान का दर्शन किया। अक्सर हम देखते हैं ऐसे लोग दावा करते हैं, हाँ भगवान तो हमको, हम ध्यान में बैठते हैं और फिर हमको भगवान के दर्शन होते हैं, और फिर दर्शन होते हैं फिर हम अपना कार्य भौतिक कार्य यथारूप जारी रखते हैं। तो ये दर्शाता है कि उनको भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान का दर्शन ना होकर के उनको उनकी मानसिक कल्पनाएं होती हैं और कई बार मतलब माया जनित होता है उनका दर्शन, भगवान का दर्शन वास्तव में भगवान का दर्शन नहीं, वो माया जनित है, जो उनको भ्रांत धारणा होती है कि हमें भगवान का दर्शन हो रहा है। अगर वास्तव में भगवान का दर्शन किसी को हो रहा है, यानी कि वो भगवान के समीप जा रहा है, तो उसका उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके लक्षण होते हैं, भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र स्यात्। भगवान की सेवा के प्रति उसका उसकी इच्छा बढ़नी चाहिए और बहुत ही जगत में भोग करने की इच्छा कम होनी चाहिए, तब हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति वास्तव में भगवान की तरफ बढ़ रहा है, उसको भगवान के दर्शन की तरफ वो बढ़ रहा है। तो कई बार लोग भक्तों पर भी ये लांछन लगाते हैं कि आपका भगवान का दर्शन प्राप्त करना भी भ्रम है, जैसे कुछ सेंटिमेंटल लोगों का दर्शन करना भ्रम है, ऐसे ही सभी कुछ भ्रम है, वो अनुभूति सब भ्रम है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। जो मानसिक स्तर पर मात्र अपने को भक्त उन्नत भक्त मानते हुए सोचते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ है, हम उनके जीवन से देखें तो उनके जीवन में भौतिक जगत के प्रति आकर्षण बना रहता है, विरक्ति भौतिक जगत में भोग की जो लालसा है वो समाप्त नहीं होती है। लेकिन जो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं उनके जीवन में हम देख सकते हैं कि उनको भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा क्रमशः शमित दमित होती रहती है। ये अंतर है दोनों में। जो कृत्रिम रूप से सहजिया रूप से सोचते हैं कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं और जो यथारूप में भगवान का दर्शन करते हैं, उनमें ये अंतर होता है। तो इस तथ्य को सामान्य व्यक्ति मात्र थ्योरिटिकल दृष्टि से नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल विषय है, इसको खुद अनुभूति भी करना होगा। जैसा श्री प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं, इसको कैसे समझा सकता है, ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। किंतु भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों को इसका यथार्थ, इसकी यथार्थ अनुभूति होती। तो इसकी यथार्थ अनुभूति भक्त करते हैं कि जैसे जैसे हम, जब जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तब तब हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। जितना अधिक उत्कंठा से, शुद्ध मन से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उतना ही अधिक हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। भगवान या गुरु महाराज, श्री प्रभुपाद, आचार्य, जितना अधिक हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जितना अधिक उनके हम सेवोन्मुख होते हैं, उतना ही अधिक उनकी उपस्थिति को हम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। तो ये चीज तो करने पर ही पता लगेगी, बिना किए इसको हम दार्शनिक दृष्टि समझ सकते हैं। कैसे? कि भगवान श्री कृष्ण और उनका स्मरण अद्वय है, भगवान श्री कृष्ण उनका नाम अद्वय है, वो एक ही है। तो दार्शनिक दृष्टि से ये समझ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर व्यक्ति को प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करना होगा। इसीलिए प्रेम, कृष्ण प्रेम का आधार है, बेस है शरणागति। तो शरणागति के फाउंडेशन पर प्रेम जागृत होता है। इसलिए क्रमशः पहले हमें शरणागति को सुदृढ़ करना होता है, तब हम धीरे धीरे ये खुद अनुभूति कर सकते हैं। सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति अधा, जो सेवोन्मुख हैं वो इसकी अनुभूति कर सकते हैं, और अनुभूति कर सकते हैं उस प्रकार से भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी सभी इंद्रियों से वो भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नेत्रों से सदैव भगवान का दर्शन करते हैं, मन के अंदर हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं, हर इंद्रिय उनकी भगवान के सानिध्य से ओतप्रोत होती है शुद्ध भक्तों की। तो इस विषय में एक इंसिडेंट है। एक बार श्री प्रभुपाद जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो एक एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका में उसके एक इंटरव्यूअर थे, रिलीजनिस्ट इंटरव्यूअर। तो वो प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे कि आप अपने सभी मंदिरों का संचालन करते हैं, तो उसमें आप किसी ना किसी को अध्यक्ष चुनते हैं और बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको, तो वो डिसीजन आप कैसे लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं कि किसको चुनना है, किसको क्या करना है, वो किस आधार पर लेते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण टेल्स। तो फिर वो व्यक्ति, ऑब्वियसली उसको समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, कृष्ण बताते हैं, तो उसको बार बार अलग अलग तरीके से पूछने का प्रयास करता है। नहीं मतलब कृष्ण टेल्स मीन्स ऐसे बहुत प्रकार से पूछता है। तो फिर जो भक्त बैठे थे आसपास में, तो वो सब सोचते हैं कि इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आ रहा है और ये कैसे है। तो समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ये शाम सत्युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। जो भक्त सदैव मेरा ये श्याम रहते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं तो उनको बुद्धि भगवान देते हैं, इसलिए जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो इस प्रकार से भगवान के द्वारा दिया होता है। रूपा जी बोलते हैं नॉट नेसेसरली, कृष्ण डायरेक्टली टेल्स कृष्ण से बताते हैं। तो फिर भक्त बोलते हैं जो उन्नत भक्त होते हैं उनके विषय में ऐसा है। तो रूपा जी बोलते हैं यस दिस इज ट्रू। तो फिर वो बोलते हैं ओ अच्छा, तो इंटरव्यूअर जो है वो आप जो हैं वो उन्नत भक्तों के विषय में पूछ रहे हैं, तो उन्नत भक्तों के विषय में ऐसा है। तो फिर वो इंटरव्यू पूछता है लेकिन जो उन्नत नहीं है तो वो कैसे डिसीजन लें? तो प्रभुपाद बोलते हैं देयरफॉर दे हैव टू आस्क द स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनको अपने गुरु से पूछना है, क्योंकि वो तो नहीं कृष्ण से सुनते हैं, तो देयरफॉर दे हैव टू आस्क स्पिरिचुअल मास्टर। तो तात्पर्य ये कि श्री प्रभुपाद जी ऐसे अनेक वृत्तांत हैं। तो ये यथार्थ है कि भक्त स्पष्टतः भगवान की अनुभूति करता है। भगवान जैसे रूपा जी बोलते थे, तात्पर्य कृष्ण डिक्टेट्स। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अनुभूति केवल एक इस प्रकार से इनडायरेक्ट तरीके से होगी। ऑफ कोर्स प्रारंभिक चरण में ददामि बुद्धि योगम, भगवान हमको बुद्धि देते हैं और हम आध्यात्मिक गुरु से और शास्त्रों के माध्यम से भगवान के आदेश को समझते हैं, पर जैसे जैसे हम अधिक अधिक सेवोन्मुख होंगे वैसे वैसे हमारा भगवान के साथ संबंध घनिष्ठ होता है। तो हमारा संबंध भगवान के साथ कितना घनिष्ठ हो सकता है, ये एक बार एक प्रश्न पूछा। हमारा भगवान के साथ संबंध कितना घनिष्ठ हो सकता है, हम देखते हैं नंद बाबा हैं, राधा रानी हैं, बहुत अंतरंग भक्त हैं, कितना घनिष्ठ हो सकता है। तो हमारा भगवान के साथ संबंध उतना घनिष्ठ हो सकता है जितना हम चाहते हैं। भगवान उत्सुक हैं हमारे साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए, लेकिन हम उत्सुक नहीं हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम अलग अलग स्तरों पर कार्य करते होते हैं, भगवान की सेवा करते हुए भी, इंद्रियों के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, और उन सब स्तरों पर एक प्रकार का आनंद अनुभूति करते हैं जिससे कि हम उस स्तर पर एक फंस जैसे जाते हैं। और भगवान व्यक्ति हैं, जैसे अभी यहाँ मंदिर में है, तो एक शुद्ध भक्त होगा वो तुरंत कॉन्शियस होगा कि गौर निताय यहाँ हैं, लेकिन एक बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति है वो जब यहाँ आएगा इस मंदिर में, तो वो भी यही मंदिर में है, वो भी गौर निताय को देख रहा है, लेकिन वो उनकी अनुभूति नहीं कर पाए कि वो कॉन्शियस नहीं होगा कि गौर निताय हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति मंदिर में आया अमेरिका में, और बहुत सुंदर मंदिर है, वो हैं शैंडेलियर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसे सब कुछ देखा। तो फिर ऐसे ही भक्त से पूछा, ओके तो यहाँ ऐसे मंदिर के बारे में डिस्क्राइब करने लगा, तो उसने भक्त ने बताया ये है और ये सब, ये मंदिर है, यहाँ भगवान है। तो कहाँ है भगवान, मैंने देखे नहीं। उसने सब कुछ देखा लेकिन उसको भगवान दिखे ही नहीं, उसको भगवान अप्रिशिएट दैट भगवान का विग्रह उसको दिखा ही नहीं, उसको अच्छा मैंने देखा ही नहीं। तो कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ध्यान देते थे, एक सिंहासन पर राजा ही बैठा है और एक कीड़ा ही बैठा है, दोनों ही सिंहासन पर हैं पर दोनों की चेतना अलग है। राजा सिंहासन में बैठा है, उसकी चेतना कॉन्शियसनेस है कि मुझे राज्य करना है, और एक मच्छर बैठा है, चेतना है कि जो आदमी बैठा है आसन पर उसका खून चूसना है। तो दोनों की चेतना अलग है। तो इस प्रकार चेतना के अलग अलग स्तर हैं, और जैसे जैसे हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत में होती है उसी अनुपात में हम कृष्ण भावनामृत में होते हैं, अर्थात कृष्ण का कॉन्शियस, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णाज एग्जिस्टेंस एंड अवर रिलेशन विद कृष्ण। तो ये हमें अपने गोस्वामियों से सीखने को मिलता है, आचार्यों से, कि हमें उत्सुक होना है भगवान से हमारा जो संबंध है वो कैसे और अधिक इंटीमेट हो, हम उनकी सेवा और अधिक घनिष्ठता से कर पाएं, उनकी अनुभूति और अधिक घनिष्ठता से कर पाएं, और अधिक अच्छी सेवा भगवान कर पाएं। इसके लिए हमें उत्कंठित होना है। लौल्यम ललास में, जिसको रूप गोस्वामी ने एकमात्र मूल्य बताया है भक्ति में प्रगति करने का, तत्रम लौल्यम एकलम मूल्यम, ये एकमात्र मूल्य है। तो ये हमारा मूड होना चाहिए इसको कल्टीवेट करना। हरे कृष्ण।